दुनिया को भुला दिया, हमें प्यार में समा लिया, है पास में बुला लिया, है पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा, बाहों में उठा लिया, तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया।
ओम शांति। आज हमारे बीच में मोहन भाई उपस्थित है। गुजरात के लोग और विशेष करके सुख शांति वाले बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा गुजरात का और सुख शांति का प्रतिनिधि आज इस मधुबन की भूमि पर अपना विशेष बेहद की सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मोहन भाई को नहीं जानते ऐसे कौन है, जरा हाथ खड़ा करें। कई नए बच्चे हैं बाबा के जो शायद नहीं जानते होंगे मोहन भाई को, और मोहन भाई हमारे यहाँ सुख शांति में भी रह चुके हैं। गुजरात में बरसों उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया है गुजरात को। ONGC में बड़ी ऊंची पोस्ट पर ये थे और फिर हमारी जो विंग्स यहाँ बनी उसके बाद विंग्स ऑफिस, सभी विंग्स का जो कारोबार चलता है उसके इंचार्ज के रूप में मोहन भाई ज्ञान सरोवर में काम कर रहे हैं। रहते पांडव भवन में ही है, ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। विशेष इन्होंने गुजरात में रहकर के बहुत बड़ी ऊंची सेवाएं की हैं। उनकी सेवाओं को देख करके, उनकी विशेष बाबा की धारणाओं की ऊंची मंजिल को देखते हुए, हालांकि मैं भी बहुत कुछ सीखा हूं और साथ मिलकर के सेवाएं करने का भी बहुत सुंदर अवसर मिला है। और विंग की सेवाओं में जैसे साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग की हमारी सल्ला दीदी चेयरपर्सन हैं और उनके साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में मोहन भाई काम कर रहे हैं, उस नाते भी पूरा कनेक्शन है हमारा। और गुजरात में बरसों रहे हैं, कर्मभूमि बनाई है, उस रीति से भी उनका हमारा गुजरात का उनका अनन्य रिश्ता है। तैसे मोहन भाई आज हमारे सामने हैं और हम लोगों को विशेष बाबा के अंग संग भी रह चुके हैं। बाबा की विशेष पालना बाबा मम्मा के लिए, मम्मा की भी ली सकते हैं, हाँ बाबा मम्मा की विशेष पालना ली हुई है। तैसे बाबा के नूरे रतन, इनकी ज्ञान की बहुत कुछ गुह्य बातें और धारणा की ऊंची दिव्यता की झलक आज हमें मिलेगी, इसका हमें बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं मोहन भाई को एक हाथ की ताली से इनका स्वागत करेंगे और अपनी बात रखने के लिए मैं उनको अनुरोध करूंगा। ओम शांति।
ओम शांति। आप सब मेरे साथ मिलके भी यज्ञ में जैसे पहले बोला करते थे उस हिसाब से ओम शांति बोलेंगे हमारे साथ मिलकर के। ओ शांति। ओम शांति। कोई भी कार्य किया जाता है या जीवन में जैसे आगे बढ़ते जाते हैं अनेकानेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और बुद्धि में सदा लक्ष्य रहता है एंड रिजल्ट का, यानी अंतिम जो प्राप्ति है उस पर बुद्धि रहती है। विद्यार्थी होता है, भले वर्ष भर पढ़ता है लेकिन उसकी बुद्धि में रहता है ये परीक्षा होने वाली है और परीक्षा में ये पेपर आएंगे, उसके अनुसार से वो तैयारी करता है। ऐसे ही हम सब भी जो बाबा के ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम सब का भी लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी और बाप समान। क्योंकि ऑटोमेटिकली नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी या स्थिति अंत में वैसी बन जाए जैसी हम सब चाहते हैं, उन सब का आधार क्या है? सब चीजों का आधार है जो इस समय का विषय है। क्या विषय है? अंतमति सोगति का। जैसा अंत में जिस समय हमारे शरीर छूटेगा, आत्मा इस शरीर से जाएगी, उस समय जो हमारी स्थिति होगी उस पर ही हमारा सारा का सारा आने वाले जन्मों का आधार है पूरा। इसीलिए बाबा इस बात पर विशेष बल देते हैं कि इतना ऐसा पुरुषार्थ हो जो अंत समय कोई और याद न आए, न कोई व्यक्ति, न वस्तु, न वैभव, न संबंध, कुछ भी याद न आए बाप के सिवाय, क्योंकि उस पर ही सारा आधार है। जिन्होंने भी नौकरी की है, जॉब किया है, उन सबको मालूम होगा कि जब व्यक्ति रिटायर होता है या ज्वाइन लास्ट में जब जाता है वो व्यक्ति, तो आगे आने वाले रिटायरमेंट के बाद पेंशन का आधार, ग्रेजुएटी का, पैसों का, सब चीजों का आधार क्या है? उसका लास्ट पे जो मिलती है उसे लास्ट पे सर्टिफिकेट बोलते हैं, LPC, जो उसको आखिरी महीने में रिटायरमेंट से पहले जो तनख्वाह मिली है, जो सैलरी मिली, उस पर ही पूरा आगे आने वाली कैलकुलेशन की जाती है। सारा आधार उस पर ही होता है। और वो अगर जितना जिसका लाभदायी होता है उतना उसे जीवन भर उसके आधार पर ही सारी पेंशन या जो कुछ भी बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब उस आधार पर मिलते हैं। ऐसे हमारा भी सारा का सारा आधार ये है अंत समय। अंतमते सोगति का मतलब जो जैसा अंतिम श्वास हमारा होगा उस समय जैसी स्थिति होगी उस पर ही पूरा दारोमदार है। हम सबके सामने ऐसा कौन सफल व्यक्तित्व है कि जिसकी अंतमते सो बिल्कुल बहुत अच्छी गति हो गई, सदा जन्म जन्मांतर के लिए वो सफल हो गया। कौन है? ब्रह्मा बाबा। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का जो अभी तक वो ही एक आत्मा है जिसका बिल्कुल कोई पुनर्जन्म नहीं, अंतिम तक पूरा का पूरा सारा हिसाब किताब बाबा चुकतू करके गया। और हमें इस बात का बहुत बड़ा सौभाग्य है, बाबा के साथ रहने का तो सौभाग्य है ही। 1961-62 में जब ज्ञान में आए तो उसके बाद से कई वर्ष तक बाबा के साथ रहने का, मिलने का, बार बार, चाहे मधुबन हो, चाहे लखनऊ हो, दिल्ली हो, कानपुर हो, कहीं पर भी हो, बाबा से मिलने का सौभाग्य बहुत मिला, लेकिन सबसे बड़ा सौभाग्य ये मिला कि बाबा ने जिस दिन शरीर छोड़ा, कौन सी तारीख को छोड़ा था और किस साल में, 1969 में। तो 1969 में जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो दो दिन पहले ही हम यहाँ आ गए थे, और 17 और 18 जनवरी को दो दिन पूरा बाबा के साथ साथ रहे, बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला, और उस आधार पर ही आज की ये क्लास है अंतमति सोगति का। क्यों? क्योंकि आंखों देखी बात कभी भी झूठी नहीं होती, सुनी सुनाई बात उनमें कई मिक्स हो सकता है, लेकिन जो बाबा की अंतिम दो दिनों में कर्मातीत अवस्था देखी उसके आधार पर ही आज हम अपनी अवस्था को भी वहां तक ले जाने का पुरुषार्थ करेंगे, जिससे हम सबकी भी अंतमते सौगति हो जाए, हम सब भी जीवन में संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को फरिश्ता स्वरूप की अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करके ही यहाँ से जाए। तो पहली बात, इसमें कुछ 8-10 बातें विशेष हैं जो बाबा की देखी, वो आप खास ध्यान रखते जाना। पहली बात कि जब बाबा से हम 61-62 में मिला करते थे तो बाबा अक्सर करके कहा करते थे कि बच्चे कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है, मनसा में तूफान तो अंत तक आएंगे, वाचा से भी किसी को दुख नहीं देना है, और मनसा में तो अंत तक भी तूफान आएंगे लेकिन उनसे कर्मेंद्रियों से भी कर्म नहीं हो। फिर बाबा धीरे धीरे और सूक्ष्म ले गए कि अगर किसी को दुख दिया तो दुखी हो मरेंगे, वाचा में भी अगर कोई कटु वचन मिला उसका भी बहुत बड़ा विकर्म बनता है। और फिर धीरे धीरे बाबा मनसा की तरफ भी ले गए कि मन के अंदर संकल्प और वृत्ति और यहाँ तक कि स्वप्न में भी किसी के प्रति कोई निगेटिविटी, नकारात्मकता या विकार का भाव ना। और अभी बाबा क्या कहते हैं, और जितना पेपर आगे बढ़ता जाता है कि अब विकारी संकल्प तो बच्चों में नहीं आते, लेकिन कौन से संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं। और गुलजार दादी ने अभी थोड़े दिन पहले ही क्लास कराया था कि बाबा ने वतन में बताया उन्हें कि बच्चे ये ना समझे चलो ये तो व्यर्थ संकल्प है, विकारी संकल्प नहीं चलते। अभी अगर व्यर्थ संकल्प भी चलता है वो ऐसा ही है जैसे विकारी संकल्प, और जैसे विकारी संकल्पों से हम दूर रहते हैं ऐसे अभी व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलने चाहिए, क्योंकि व्यर्थ संकल्प भी धीरे धीरे विकारी संकल्प का रूप धारण कर लेते। तो बाबा देखो हमें धीरे 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 स्थूल से एकदम सूक्ष्म की ओर लेता चला जा रहा है, और धीरे धीरे बाबा बस समेटता जा रहा है स्थूल से एकदम अति सूक्ष्म। एक बात तो हमें ये करना है कि बाबा की तरह हमें भी जितना हमारा विस्तार है उसको समेटते जाना है, तो हमारी अंतमति सोगति निश्चित है, अच्छी होगी। क्योंकि जितना फैलाव होगा ना बुद्धि वहीं जाएगी, कोई बिजनेस का फैलाव हो, संबंधों का फैलाव हो, कहीं पर किसी भी बात का कुछ भी है, मार्जिन है बुद्धि को वहां अटकने का, तो 100% अंत समय वही पेपर आएगा जिसमें हम कमजोर होंगे। और इसीलिए जैसे उस कमजोर पेपर हमारे सामने आएगा उसमें फेल होने की संभावना ज्यादा रहे। इस कारण से अभी से ही हम धीरे 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 उन बातों को समेटते, हर एक कोई जानता है मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, कहाँ भटकती है, संबंधों में कहीं लगाव झुकाव होगा वहां जाएगी, या कहीं घृणा भाव, ईर्ष्या भाव, किसी के प्रति दुश्मन भाव होगा वहां पर भी जाएगी, जहां पर धन दौलत संपत्ति वहां जाने की भी संभावना है, और अगर शरीर के कोई बीमारी है, कोई कष्ट है, बार बार बुद्धि की वहां जाने की भी संभावना है। इसीलिए जो भी हमारा वीक पॉइंट है, कमजोर पॉइंट है, उसकी तरफ हम विशेष अटेंशन दें कि बुद्धि का फैलाव जहां बुद्धि जाती है उस तरफ हम विशेष ध्यान दे करके वहां से अपनी बुद्धि को ऐसा लगाने का वो करते रहे, अंत समय में बुद्धि वहां न जाए। क्योंकि पेपर में तो बाबा ने बताया है, लौकिक में स्टूडेंट्स का पेपर होता है और हमारे अलौकिक पेपर, उसमें क्या अंतर है? पेपर वहां भी होता है यहां भी होता है, क्या अंतर है दोनों जगह? वहां पर बाकी सब चीज मालूम है, सिर्फ पेपर नहीं मालूम। वहां ये मालूम है किस दिन है, कौन सा सब्जेक्ट का पेपर है, कितने घंटे का पेपर है, कहाँ हमारा सेंटर है, सब मालूम है, सिर्फ पेपर के क्वेश्चन नहीं मालूम। और यहाँ एकदम उससे उल्टा है कि पेपर के क्वेश्चन मालूम है हाँ, लेकिन किस परिस्थिति में क्या पेपर और क्या होगा वो नहीं मालूम। इसीलिए एक तो अंत मते सो गते के आधार पर हमारा ये चलता रहे, और इसका कनेक्शन सबका अंत मति बोला, मति माने मन से कनेक्शन, बुद्धि से कनेक्शन। क्योंकि जो मन के अंदर संकल्प होंगे, जो बुद्धि के अंदर संकल्प होंगे, वो ही वहीं जाएंगे जहां पर बुद्धि का लगाव झुकाव या कुछ होगा, और बस वो संपूर्ण नहीं बनने देंगे। बाबा ने भी ये रियलाइज किया। देखो बाबा भी तो घर गृहस्थी वाला था, 1936-37 तक बाबा के भी बच्चे थे, पत्नी थी, व्यवसाय था, सब कुछ था। लेकिन जब बाबा को ये रियलाइज हुआ कि ज्ञान का साक्षात्कार हुए, जीवन परिवर्तन हुआ, उसके बाद भी बाबा ने ये रियलाइज किया कि ये मन भाग जाता है, बड़ा चंचल है, भक्ति में जैसे बोलते हैं ना। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने मन को पत्र लिखा। वो पत्र की कॉपी हम लोगों को, सीनियर भाई बहनों को, भाइयों को दी गई थी कई वर्ष पहले, लेकिन उसका मजमून हम बताते हैं आपको। क्या बाबा ने पत्र लिखा, ज्ञान में आने के बाद भी, एक दो साल के बाद भी बाबा ने जब ये रियलाइज किया मन भाग जाता है, योग लगाते हैं मन चला जाता है। बाबा ने क्या लिखा मन को पत्र, कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू मंत्री बलशाली हो गया और मुझ राजा को तूने कमजोर कर दिया, और इसलिए तू जहां जहां कहता रहा मैं तेरे पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा पुनः अपनी स्वस्थिति में, शक्तिशाली स्थिति में आ गया हूं, आ रहा हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मंत्री है, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। बाबा ने ऑर्डर दिया, बस उसके बाद से। और ऐसे ही पत्र बाबा ने बुद्धि को भी लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ चलती रही। मन अगर मंत्री है तो बुद्धि क्या है, सेनापति है, और संस्कार सैनिक है। तो जहां जहां मंत्री कहता रहा, बुद्धि सेनापति, तू भी वहां वहां भागती रही, और तुम दोनों ने मिल करके मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर कर दिया। जैसा तुम कहते थे वैसा मैं करता चला गया, और इस कारण से मैं आत्मा राजा बहुत शक्तिहीन हो गया। लेकिन अब मैं तुझे बता देता हूं, कह देता हूं, अब तुम्हें मेरे ऑर्डर पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे ऑर्डर पर नहीं चलूंगा, क्योंकि मैं राजा हूं। बाबा ने अपने को स्वस्थिति में स्थित किया, और उसके बाद से बाबा ने ये रियलाइज किया कि फिर मन और बुद्धि, उन्होंने कभी भी बाबा आत्मा राजा को कभी भी धोखा नहीं दिया। हम अक्सर कह देते हैं भक्ति मार्ग की, और क्या करें, हम चाहते तो नहीं, लेकिन मन भाग जाता है, और ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन हम देखें कि क्यों भाग जाता है, उसके लिए बाबा ने बताया कि मन को ऑर्डर करो, लेकिन मन कब ऑर्डर मानेगा, जब हम अपनी सीट पर स्थित होकर के ऑर्डर करेंगे। कोई भी मिनिस्टर होता है, राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, जब तक वो अपनी सीट पर है सब उसका ऑर्डर मानेंगे, लेकिन जब वो रिटायर हो गया या इलेक्शन हार गया या ट्रांसफर हो गया कहीं, कोई उसका ऑर्डर मानेगा, नहीं मानेगा। तो हम भी बिना मन की सीट पर बैठे मन को एक्सपेक्ट तो करते हैं, इच्छा रखते हैं कि मन हमारी बात माने, लेकिन वो मानता नहीं। एक मिनट के लिए मानो बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, हम चाहते हैं हमारे अंदर समाने की शक्ति आए, एक मिनट के लिए आएगी, फिर मन चंचल होके फिर व्यर्थ संकल्प चलने लगेंगे। तो इसलिए अंत मते सो गति अगर हम चाहते हैं तो पहला एक बात ये ही कि मन और बुद्धि को ऑर्डर करें स्वमान की सीट पर बैठ के। और आप देखोगे बिल्कुल अगर स्वमान की सीट पर बैठ करके ऑर्डर करते हैं तुरंत ही मन बात मान लेता है और फिर उधर बुद्धि बिल्कुल नहीं जाती जहां पर हम नहीं चाहते कि बुद्धि जाए। लेकिन कंडीशन यही है एक तो कि मन को हम स्वमान की सीट पर स्थित हो करके बस मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूं, मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरा पिता सर्वशक्तिवान और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मन मेरा मंत्री है, मन को मेरे कहने पर चलना ही पड़ेगा, और बस जब ये ऑर्डर करते हैं फिर मन कभी नहीं भागेगा। एक तो हम ये देखें और क्या देखें साथ साथ बाबा ने और क्या किया कि हमारी स्वस्थिति जो है ना उस वो परिस्थिति के ऊपर हावी हो। अभी क्या है परिस्थितियां शक्तिशाली हो जाती हैं और हमारी स्वस्थिति पर हावी हो जाती हैं और इस कारण से हम परिस्थितियों के वश हो जाते हैं। मानो कहीं पर कोई किसी ने शरीर छोड़ा, शमशान घाट है या शरीर छोड़ा है, सन्नाटा है, सब शोकमग्न है, हम भी जाते हैं, हमारी भी स्थिति शोकमग्न हो जाती है, दुखदाई हो जाती है, आंसू आ जाते हैं, कोई कई बात, क्यों, क्योंकि परिस्थिति शक्तिशाली है, मैं आत्मा कमजोर। लेकिन अब बाबा क्या चाहता है कि किसी भी स्थिति में हम स्वस्थिति परिस्थिति से कम न हो, परिस्थिति के ऊपर। और वो बाबा का हम देखते थे, क्या देखते थे, देखो बाबा 93 इयर्स के थे, बाबा को कई बार खांसी आती थी, ऐसी स्थिति हो जाती थी खांसते हुए आंख में से भी गीली हो जाती थी और बस ऐसा लगता था बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन तुरंत ही बाबा, हिस्ट्री हॉल तो देखा ही आपने, हिस्ट्री हॉल में एक तरफ बाबा के किनारे वो लाइट ट्रांस लाइट रखा हुआ है, श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का, तो बस एक तरफ खांसी आती थी, बाबा तुरंत ही अपनी स्वस्थिति में, देखो बच्चे अभी ये पुराना शरीर है, ये खांसी ये तकलीफ है, व्याधि है, अनेक जन्मों के रोग है, ये सब निकल रहे हैं, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा, मिशनो कृष्ण, कोई भी व्याधि नहीं होगी, और अभी ये सब चीज जैसे छुट्टी लेने के लिए आ रही है, जैसे दीवा बुझने से पहले ना कहते हैं तेजी से टिमटिमाता है, ऐसे ये शरीर की बीमारियां परिस्थितियां ये सब भी आधा कल्प तक तो हमारी कोई परीक्षा लेंगे नहीं, आधा कल्प तो आएंगे ही नहीं, तो इसीलिए अभी अगर आते हैं तो हम उसको भी पॉजिटिव रूप में लें कि बच्चे बस अभी ये दीवा बुझने से पहले, परिस्थितियों का, शरीर के पेपर संबंध ये सब बुझने से पहले तेजी से आ रहे हैं, लेकिन इनसे घबराओ नहीं बिल्कुल, क्यों, क्योंकि बस अब ये बुझने ही वाले हैं और इसीलिए ये तेजी से आ रहे हैं। अब बच्चे कल जाके बाबा ऐसा बनेगा और बस बाबा के चेहरे पर वही रौनक आ जाती थी, खुशी आ जाती थी, कल बाबा जाके ऐसे कृष्ण बनेगा और बच्चों को ऐसा होना चाहिए, खूब खुशी होनी चाहिए चेहरे पर, और बच्चों को क्या करना चाहिए, हाँ खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गियां मारनी चाहिए, वो तो सुना होगा ना, चलो खग्गी मार के दिखाओ कोई, मालूम है ना सबको जो नए भी हैं, बाबा एकदम एक मिनट पहले ही आंख गीली हो रही थी, खांसी आ रही थी, दूसरी अरे बच्चे कल बाबा जाके ऐसा कृष्ण बनेगा विष्णु बनेगा, अब बस पूरे वातावरण ही पूरा बदल जाता था एक आत्मा से स्वस्थिति से पूरा वातावरण। तो हमें एक ये देखते चलना है कि हमारी स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली होती जाए जो अंत समय में ना हमारे वो ऐसी बात ना हो कि परिस्थितियां हम पर, क्योंकि अंत समय ही परिस्थितियां आएंगी। बाबा ने ये भी बताया है पेपर भी वो आएगा कौन सा जिस पेपर में हम कमजोर होंगे। और बाबा ने बताया वर्तमान समय दो प्रकार के पेपर बच्चों के सम्मुख ज्यादा आएंगे। कौन से दो पेपर? एक है शरीर का पेपर। ये हम ना समझें कि हम तो जवान है कोई बीमारी नहीं है, नहीं, शरीर इस जन्म का चाहे इतना वृद्ध न भी हो लेकिन 63 जन्मों से बल्कि 84 जन्मों से आत्मा जो पुनर्जन्म लेती आई है और अनेक जन्मों का जो हिसाब किताब इकट्ठा हो गया है वो इससे ही तो चुप तो करना है पूरा का पूरा। थोड़ी दिन पहले भी मुरली थी ना बाबा की है कि दो प्रकार से हिसाब किताब चुप तो कर सकते हैं, इस जन्म के और पिछले जन्म के, याद है ना मुरली, सबको याद होगी। कैसे करेंगे इस जन्म का हिसाब किताब? नहीं, बाबा की याद से पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकते होंगे और इस जन्म के हिसाब किताब कैसे माफ होंगे? बाबा को बता देने से। हम लोगों ने भी ना अपनी जीवन कहानी जब आए थे बाबा का चलता था, अपना जीवन कहानी लिख करके दिया, तब तो बहुत यंग पढ़ाई करते थे, 16-17 साल के थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में गए थे पढ़ने, तो बस बाबा ने कहा तो लिख करके लाए। बस बाबा ने देखा अरे बच्चे ये तो सब छोटी मोटी वो है कि भाई यहाँ से ये खा लिया, चोरी कर लिया, यहाँ से ये कर लिया, ये बताओ कोई विकर्म तो नहीं किया है कर्मेंद्रियों से, विकारों में तो नहीं बाबा? बस फिर कोई बात नहीं, बाबा ने देखा और ठीक है बच्चे माफ। लेकिन तब तक तो कोई नहीं, उसके बाद से और ज्ञान मार्ग में भी जो आते हैं तो बाबा ने यही बताया कि ज्ञान मार्ग में आने के बाद से अगर कोई विकर्म होता है उसका 100 गुना दंड, जैसे जो प्राप्ति होती है 100 गुना प्राप्ति, अगर जानने के बाद विकर्म होता है उसका 100 गुना दंड होता है। इसलिए अभी तो ये खास ख्याल रखना है कि तन से और मन से कोई विकर्म ना हो, क्योंकि 100 गुना जो माइनस खाता चला जाएगा अज्ञान काल में किया वो तो चलो बाबा को बताया, अभी क्या करेंगे? बाबा तो नहीं है साकार में, कैसे करेंगे? जो किया भी है वो कुछ लिख करके, भले अपना नाम भी नहीं लिखो, क्योंकि कई बार नाम लिखते हैं तो ये रहता है कि अरे भाई नाम लिखेंगे तो दूसरों को पता चलेगा, हमारा सोशल स्टेटस डाउन हो जाएगा या कुछ भी, तो बस लिख करके बाबा के कमरे में बाबा की झोपड़ी में भी जो रखा है बॉक्स उसमें डाल दो, ना नाम लिखो ना जगह लिखो, फिर तो कोई खतरे की बात ही नहीं है। और लेकिन बाबा तो सच्चे दिल का भोका है, सच्चे दिल पर साहब राजी। हम जितना कह के कर देते हैं बाबा इस जन्म का तो, और इस जन्म के ही विकर्म ज्यादा वो परेशान करते हैं क्योंकि वो मालूम है, याद है। पिछले जन्म में 50 किए होंगे वो कोई याद है क्या पिछले जन्मों का? नहीं याद, तो वो कोई परेशान नहीं करेंगे। लेकिन इस जन्म में अगर कोई हुए तो कम से कम उतना तो माफ हो गया ना, उतना तो हम हल्के हो गए। इसमें जाने से पहले हमारी पूरा वो हो, बस जो भी करा है ऐसा जो मन में खाता है, जो कोई ऐसा विकर्म है जो आप समझते हो कि ज्ञान मार्ग में आने के बाद नहीं होना चाहिए था और फिर भी हुआ है, तो बस बाबा को लिख करके, भले अपना नाम वो कुछ नहीं लिखो, शहर नहीं लिखो, बस डाल दो, बाबा तो दया का सागर है, माफी बस मांग लो। ये इससे जिंदगी बड़ी हल्की हो जाएगी। जिंदगी का सफर, बड़ा अच्छा किसी ने कहा, जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया, जिंदगी का सफर कुछ इस तरह आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। ये होता है ना जीवन में, किसी के प्रति हमारा अगर निगेटिव दृष्टिकोण है, किसी ने हमारा कभी अपमान किया है, दुख दिया है, मन में सूक्ष्म भावना रहती है, तो वो प्रकट होती है, उसे दृष्टि नहीं देंगे, सामने से आएगा तो भी नजर बचा के चले जाएंगे, बात नहीं करेंगे। इसका मतलब जो बाबा कहता है सर्व आत्माओं को हम समान रूप से देखे वो नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारा विकर्म बनता है अगर हमारे कारण किसी का संकल्प चलता है। इसीलिए कहते हैं दो शब्दों से बचना चाहिए, एक अपेक्षा दूसरी उपेक्षा। दूसरे की उपेक्षा की, उसको नेग्लेक्ट किया, उसके जितने संकल्प चलेंगे वो हमें भारी कर देंगे, योग में उठने नहीं देंगे। मुझे बड़ी दीदी का याद आता है, मनमोहनी दीदी थी, तो यहाँ पर एक उन्होंने अनुभव सुनाया हमारी भट्टी में, जो पुराने सीनियर थे, कि तब तो आबू बहुत छोटी जगह थी, सप्ताह में एक बार भाई नीचे जाता था आबू रोड, और कोई काम होता था वो करके आता था। तो दीदी की ड्यूटी थी पेशेंट्स को भोजन बना के खिलाने की, उसके लिए एक स्टोव था, वो स्टोव खराब हो गया था, तो दीदी ने प्लान किया होता जब भाई जाएगा स्टोव भेज देंगे और रिपेयर करा के ले आएगा, लेकिन जिस दिन भाई गया उस दिन दीदी भूल गए, याद नहीं आया, बाद में याद आया, तो उन्हें बड़ा वो हुआ, बाबा के पास गए, बाबा मुझसे ये भूल हो गई कि उस स्टोव को नहीं भेजा और जो जिसमें पेशेंट का खाना बनता है। तो बाबा ने उन्हें उस वक्त तो हल्का कर दिया, कोई बात नहीं बच्ची, लेकिन ये याद रखना कि पेशेंट्स को जब तक उनके अनुरूप खाना नहीं मिलेगा, तुम्हारी भले ये तुम्हें छोटी भूल लग रही है, लेकिन ये तुम्हें योग में हमेशा नीचे खींचती रहे, कभी भी योग की स्थिति में ऊपर नहीं चढ़ने देगी, क्योंकि मेरे कारण अगर दूसरों के संकल्प चलते हैं, इसका मतलब चूंकि मेरे कारण चलते हैं मैं भारी हो जाऊंगा, और दूसरे के जो संकल्प चल रहे हैं उसका कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि चलाने के लिए हम निमित्त हैं, तो हमारे व्यवहार से कुछ ऐसा प्रदर्शन न हो जिससे कि दूसरा भारी हो जाए। तो ये है उपेक्षा, किसी की उपेक्षा कर दी, नेग्लेक्ट कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। अक्सर करके हमारा यही छोटा संसार है, हमारे ब्राह्मण परिवार में किन्हीं से बनती है तो बहुत बातचीत करते हैं, और नहीं अगर पूरी बनती तो दृष्टि भी पूरा नहीं लेंगे देंगे, बात नहीं करेंगे, और सम्मुख भी आएगा तो नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये उपेक्षा और अपेक्षा, किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, तो ये भी खराब, क्योंकि जिनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं, ये सेवा में ये मदद करे, ये हो, और एक्सपेक्टेशन जहां होती है ना वहां पर क्या होता है, खुशी बहुत कम हो जाती है। किसी ने हैप्पीनेस का फार्मूला दिया है कि हैप्पीनेस यानी खुशी इज इक्वल टू अचीवमेंट्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन। अचीवमेंट माने कि प्राप्ति, और नीचे एक्सपेक्टेशन माने अपेक्षा है। जितनी हमारी यहाँ तक कि पति की पत्नी से, पत्नी की पति से, बाप की बेटे से भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, अपने पैर पर खड़ा करना, वो हमारा कर्तव्य है, उसे करें, लेकिन अगर हम रिटर्न में ये एक्सपेक्ट करते हैं जब मैं बूढ़ा होऊंगा बच्चा हमारी पालना करेगा, मदद करेगा, और एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल नहीं होती तो उसमें दुख होता है। तो अपेक्षा बस एक बाप से, परमात्मा से ही रखे हैं, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, किसी भी देहदारी से कोई अपेक्षा होती है तो अंत मते सो गति में वो बहुत बड़ी बाधक होगी। इसीलिए किसी से हाँ अगर करते हैं मदद तो अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन नहीं करी उसका मलाल, गम, अफसोस वो बहुत बड़ा होगा, वो न याद में टिकने देगा और न हमें ऊंची स्थिति में ले जाएगा। तो एक पेपर तो ये है, जो दो पेपर मुख्य आने हैं, एक है अपने शरीर का पेपर, शरीर का क्या, जो बची हुई जो भी संस्कार हैं, बीमारियां हैं, कुछ भी हैं, वो निकलेंगी। उससे बचने का साधन क्या है? शरीर का पेपर। कितने बड़े से बाबा को हम देखते थे, इतनी उम्र, लेकिन बाबा का एक अभ्यास बहुत पक्का था और उसी ने बाबा को लास्ट में पूरी मदद करी। जैसे बस पंछी बस कह के ही, बस बाबा मैं आपके पास आ रहा हूँ ब्रह्मा बाबा का, और बाबा उड़ गए। वो है जब चाहे शरीर में आने का अभ्यास, जब चाहे शरीर से न्यारा होने का अभ्यास। बहुत पक्का था बाबा को। पार्टी से मिलने का टाइम दिया हुआ होता था, बाबा या तो झोपड़ी में या अपने कमरे में या हिस्ट्री हॉल में मिलते थे, जैसी पार्टी की संख्या होती थी। तो बस ब्राह्मणी समय पर आती थी पार्टी को लेके, देखती थी बाबा बस बैठे हैं, आंख भी खुली है लेकिन ध्यान कहीं और है, देह यहाँ है लेकिन देह से जैसे न्यारे हैं। ब्राह्मणी आती थी, टीचर कहती थी बाबा बाबा, तो कई बार बाबा को जैसे ना जर्क सा लगता था, झटका, है बच्ची, अच्छा अच्छा आई हो, हाँ बाबा पार्टी लेकर के आई हूँ फलानी जगह से, हाँ लाओ लाओ बच्चों को बैठाओ। तो जैसे बाबा देह में खींच करके आते, जैसे न्यारे रहते थे, देह में खींच करके फिर बाबा मिलते थे सबको बड़े प्यार से, स्नेह से। और बस जैसे बाहर फोटो लगा है ना, आपने देखा है, बाबा आओ आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, बस। और उसमें इतनी चुंबकीय आकर्षण होता था, हम खींचते ही बाबा की बाह में चले जाते थे एकदम, आओ बच्चे। दृष्टि इतनी शक्तिशाली होती थी, और जैसे बाबा की बाह में गए, विदेही हो गए, अशरीरी हो गए। एक को दो को, हर एक को यह अनुभव होता था। फिर जब अशरीरी हो जाते थे, फिर कुछ आधा मिनट के बाद बाबा ऐसे, हाँ बच्चे, हाँ आओ 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 बच्चे, नीचे आओ। तो ऐसे बाबा प्यार से थपथपा के जैसे हमें फिर से देह में लाता था, हम देह में आते थे। कोई आत्मा जाती नहीं है शरीर छोड़ के, लेकिन विदेहीपन का जो अभ्यास, उसके बाद क्या होता था, बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, कोई बात होती थी पूछते थे बच्चे, बाबा उसका जवाब देता था। फिर एक जाता था, दूसरा आता था, उसको भी यह अनुभव होता था, तीसरा आता था उसको भी यह अनुभव, सबको यह अनुभव। तो विदेहीपन का अभ्यास जब चाहे शरीर में आए, जब चाहे शरीर से न्यारे हो जाए, ये अभ्यास अंत समय में शरीर की जितनी भी व्याधि होगी, हमारा अपना भी अनुभव है, कई बार का अनुभव है, बहुत शरीर की व्याधि है, 105 बुखार भी है, नींद नहीं आ रही है, बहुत पेन हो रहा है, लेकिन बस बाबा की मुरली की गाइड लाइन अक्सर करके, जो बाबा की उस दिन की मुरली होती है, उसमें हमारे लिए वही गाइडलाइन विशेष होती है जो हमें आवश्यकता होती है। बस अरे बच्चे विदेही बन के बनोगे, कोई शरीर की व्याधि कष्ट नहीं देगी। शरीर में व्याधि है, बुखार भी है, दर्द भी है, लेकिन हमने अपने को अगर थोड़ा शरीर से डिटैच कर लिया, तो अनुभव करने वाली तो आत्मा ही है। जब शरीर अनुभव आत्मा नहीं होती है, शरीर जब मृत होता है, डेड बॉडी हो जाती है, तो जितना आग लगा दो, काट दो, जला दो, कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही शरीर से डिटैच होने का जितना अभ्यास होगा, और वो बाबा को बहुत अच्छा अभ्यास था, और बाबा उसका हरेक को अनुभव कराता था। तो इसीलिए हमारे, हम बच्चों का भी अब ये कर्तव्य है, जो बाबा के हम सब पुराने बच्चे हो गए हैं, कि केवल अपने को अनुभव न करें, ऐसा हमारी दृष्टि में शक्ति हो कि जिस पर भी हमारी दृष्टि जाए वो शरीर से न्यारे हो जाए। ये अंत में बहुत बहुत, एक तो ये मदद करेगी, क्योंकि शरीर का पेपर सबके सामने आना है, छोटा हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो। क्यों? क्योंकि यही हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है, पांच तत्वों का बना हुआ। तो ये साथी सतयुग से लेकर है, अलग अलग नाम रूप में है, लेकिन है तो शरीर पांच तत्वों का ही बना। इसीलिए एक ये पेपर, दूसरा पेपर कौन सा, बाबा ने कहा है परिवार का पेपर, ब्राह्मण परिवार का। अभी क्या होता है, बाहर का कोई परिवार वाला है, कोई जानकार है, वो हमें कोई बात कहेगा, हम उसे ख्याल ही नहीं करेंगे, अज्ञानी है, उसने ये बात कह दी, कर दी। लेकिन ब्राह्मण परिवार ने अगर कोई भी अपमान कर दिया या कोई बात हो गई, वो हमारे दिल पर छप जाती है, क्योंकि हमारा संसार ही ये हो गया, बाहर की दुनिया वालों से बस कोई नाता ही जैसे प्रैक्टिकली नहीं रहा। इस कारण से बाहर का जो पेपर, परिवार का पेपर आएगा, उसका कैसे सामना करना है? बहुत पेपर आते हैं सुबह से शाम तक, कैसे सामना करेंगे उसका? उसके लिए क्या युक्ति है? बाबा ने एक तो बताया है, एक तो युक्ति ये है कि कभी भी किसी को एक काल की दृष्टि से नहीं देखो। वर्तमान में अगर कुछ घटना हुई, अपमान हुआ या कोई भी बात, उस आत्मा को हम केवल वर्तमान के रूप में ना देखें, ये तीनों कालों की दृष्टि से देखें कि ये वही आत्मा है, कलप पहले वाली, डबल ताजधारी, विश्व महाराजा, विश्व महारानी, वो आत्मा है। और एक तो, और अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है, लेकिन भविष्य में फिर से इसकी स्थिति ऊंच होने वाली है। एक तो ये दृष्टिकोण रखें, तीनों काल की दृष्टि से देखें उस आत्मा को, तो क्या होगा? कभी भी मन में क्वेश्चन नहीं होगा। जैसे फिल्म होती है ना, फिल्म में सबका रोल अलग अलग होता है, कोई हीरो है, हीरोइन है, कोई विलेन है, कॉमेडियन है, नाचने गाने वाला है, हंसाने वाला, सबका रोल अलग अलग होता है। विलेन का रोल देख के ये थोड़ी होता है कि इसने ऐसा नेगेटिव पार्ट क्यों करा, नहीं, सबका रोल है। इस रीति से हम हर आत्मा को देखें, भले अभी वो नेगेटिव रोल है, लेकिन ये उसका रोल है, वो पार्ट प्ले कर रही है, वास्तव में वो आत्मा नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा ने बताया है कि जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं, सब मेरे चुने हुए बच्चे हैं, भगवान ने उन्हें चुना है, और इस कारण से वो चुने हुए बच्चे वर्तमान में कोई प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, बहुत बड़ा व्यक्ति भी है, लेकिन मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी उससे महान है। क्यों? क्योंकि भगवान ने चुना है, जरूर उस आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, इसीलिए वो बाबा का चुना हुआ बच्चा है। अब भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता, इस कारण से ये भगवान की सिलेक्टेड आत्मा है। भले आज इससे ये भूल हो रही है, आज उसका ये रूप देखने में आ रहा है, लेकिन चूंकि भगवान की चुनी हुई आत्मा है, समय पर इसके द्वारा ऐसा कर्तव्य होना है जिसको द्वारा भगवान की प्रत्यक्षता होनी है, बाबा की प्रत्यक्षता, आज भले उसका यह है। इस कारण से हम उसे तीनों कालों के दृष्टिकोण से देखेंगे, तो उस पेपर से भी बिल्कुल सहज वो आत्मा का जान, जितना नेगेटिव रोल होगा वो हमारे संकल्प चलाने के निमित्त नहीं बनेगा, उसके प्रति हमारा नेगेटिव दृष्टिकोण, ईर्ष्या, घृणा, बदले की भावना, ये सब कुछ नहीं होगी, क्योंकि भगवान की चुनी हुई आत्मा है, और अभी ये भी उसका पार्ट है, बस ये भी खत्म हो जाएगा, फिर से वो आत्मा अपने स्वरूप में आ जाएगी। इस कारण से ये पेपरों को पार करने के लिए सदा हमारी बुद्धि में ये दोनों पॉइंट रहे, उससे क्या होगा? और देखो, अंत मते सो गते, अंत के पेपर में भी वो ही पास होगा, कौन? जो बहुत समय तक पास होता रहा होगा। रोज 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 हम फेल कर रहे हैं, अगर एक स्टूडेंट है, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और मंथली हर टेस्ट में फेल हो रहा है, और वो एक्सपेक्ट करे कि फाइनल में मैं एकदम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ जाऊंगा, तो होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए अभी से हमें ये सोचना कि अंत में चलो पास हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं, अभी से ही हमें हर पेपर में पास होना। इसीलिए बाबा ने कहा है, तीन शब्द बाबा हमेशा रिपीट करता है ना, कौन से तीन शब्द है? हाँ बोलो, नहीं वो भी है, वो तो है ही है, इससे संदर्भ में एवर रेडी, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल, ये बुद्धि में जितना रहेगा उतना डेफिनेटली यहाँ जितना पास होते चलेंगे तो बहुत काल में का पास होंगे तो अंत काल में पास होंगे 100% होंगे ये। और क्या बाबा का देखा यहाँ पर है, हम यहाँ आसाम में पोस्टेड थे, इंजीनियरिंग पास करी हमने वहाँ पर, धनबाद से पढ़ाई करी थी पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, 4 साल पढ़ने के बाद वहाँ पोस्टिंग हुई, तो हमारी दिल नहीं थी वहाँ जाने की, लेकिन बाबा ने कहा नहीं बच्चे बाबा ही तुम्हें भेज रहा है, वहाँ जाओ और समय पर बाबा तुम्हें बुला लेगा, समय पर बाबा तुम्हें बुला लेगा। कोई ध्यान नहीं दिया, बाबा ने कहा गए, और वास्तव में बाबा के इतने पत्र आते थे, अभी भी हमारे पास बाबा के 8-10 पत्र सुरक्षित है, और बस बाबा बहुत हाँ बच्चे ये सर्विस करो ऐसे करते थे, बहुत सफलता बाबा देता था। तो 67 में 1967 में आसाम में जाना हुआ पास करने के बाद, कोई भी सेंटर नहीं था वहाँ, लेकिन बाबा ने वहाँ खुलवा दिया, और जनवरी 1969 में बस ऐसे ही बाबा की तरफ से जस्ट डायरेक्शन आई, हमारा कनेक्शन देहरादून से था, वहां से गए थे, तो वहां बहन जी ने बोला था कि भैया म्यूजियम बनने वाला है, आप अगर आओ तो अच्छा रहेगा। हमने कहा ठीक है, वहां के लिए बाबा से पूछा, बाबा ने कहा ठीक है भले वहां जाओ, लेकिन पहले मधुबन आओ और प्लेन से आओ। देखो बाबा ने इशारा दिया और बस मधुबन प्लेन से पहुंच गए, फर्स्ट टाइम ही जैसे प्लेन में उस टाइम बैठे, 69 की बात है जनवरी, और 17 जनवरी की सुबह यहाँ पहुंच गए, और 17 और 18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का ये पूरा मौका मिला। कर्मातीत अवस्था में और क्या है, अपने को हम टेस्ट कर सकते हैं कि अंत मतेसो गति में मैं भी 100% पास होऊंगा, क्यों बाबा की उस वक्त जो अवस्था देगी। हमेशा बाबा से मिलते थे, पहले बाबा सुनते थे हालचाल और समाधान देते थे, लेकिन 17 और 18 जनवरी को जब बाबा से मिले, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, लगभग 6-7 बार मिलना हुआ 2 दिन में, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ऐसे थोड़ी सी दृष्टि दी, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो ऐसा हो जाए, मतलब हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम क्यों गए भाई, मन में होता था ये प्रश्न पूछेंगे, धारणा की बात, ये सेवा की बात, ये पुरुषार्थ की बात, कोई भी, बस बाबा दृष्टि देके एकदम सीधे मन में उतर जाते थे, मन की बात पढ़ लेते थे। ये है लक्षण मन जीते जगत जीत का, मन को जिसने अपना मन जीता हुआ होगा वो दूसरे के मन के विचारों को तुरंत ही पढ़ लेगा और उसका समाधान कर देगा। तो एक बार, दो बार, चार बार, जब 6-7 बार ऐसा हुआ, तो बाद में हमने एक बार पूछा था तो अपने वरिष्ठों से, दादियों से, तब दादी ने कहा देखो जो खुद इच्छा मात्रम अविद्या होगा, जिसने अपने इच्छाओं को संकल्पों को जीता हुआ होगा वो दूसरे की इच्छाओं को भी संकल्पों को पढ़ सकेगा और उनको इच्छाओं को पूर्ण कर सकेगा। कितनी बार, अंतिम क्लास की भी बात है, ये तो दिन में कई बार हुआ, लेकिन क्लास में 18 जनवरी की रात्रि क्लास, बाबा क्लास हिस्ट्री हॉल में करा रहे थे, हम सब सामने बैठे हुए थे, बस दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी भी बाईं तरफ बैठी हुई क्लास सुन रहे थे, हम भी भाइयों की तरफ तीसरे चौथी लाइन में बैठे हुए सुन रहे थे। अचानक सुनते सुनते ही हमारे मन में विचार आया कि भाई क्या ही अच्छा हो कि बाबा हमारा नाम लेके या हमें कोई बात कहे, डायरेक्शन कहे, जिससे हमारे पुरुषार्थ में और तीव्रता आए। बस देखो इधर मन में संकल्प उठा, और वो तो आत्मा कर्मातीत अवस्था को थी, पूरे संकल्प जीत, मन जीते जगत जीत की स्थिति में थी वो तो आत्मा। हमारा संकल्प उठा उधर, बाबा को तुरंत पहुंचा होगा और भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, जैसे भाई भक्त के मन में कोई इच्छा होती है तो जो इष्ट देव होता है वो तुरंत ही भक्त की इच्छा को पूर्ण करता है और उसके मुख से क्या निकलता है, तथास्तु। बस तो यही मन में संकल्प हुआ, कहने की बात तो दूर रही, संकल्प ही था, बाबा तक पहुंचा और बाबा ने तुरंत ही दूसरे क्षण मुरली की लाइन में नाम लेके बाबा ने बहुत गाइडलाइन दे दी, बहुत प्रेरणादायक बात बोली हमारे जीवन के लिए, जो आज तक भी हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ा रही है। तो ये जो है लक्षण, ये अंत मते सो गति का है, अंत में अपने सारे इष्ट देव जो होगा उसके जो भी भक्त होंगे, भक्त आत्मा है उसके जो भी आत्मा है, उन सब की इच्छाओं को वो पूर्ण करने के निमित्त बनेगा। ऐसे हमें भी अपने देखते चलना है कि मेरे सामने कोई आत्माएं आती है वो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के मैं निमित्त हूं। इच्छाओं का मतलब क्या, ऐसे नहीं कोई भक्ति मार्ग की या वो, लेकिन जब इष्ट देव के सम्मुख भक्त आत्माएं जाती हैं, कोई मानो किसी स्थिति में आए, कोई साक्षात्कार की इच्छा लेके आत्मा आए, कोई चार आत्माएं आई हमारे सामने, एक दुर्गा का भक्त है, एक हनुमान का, एक राम का, एक कृष्ण का, हम तो एक ही हैं, हमारे से किसको कैसे साक्षात्कार हो, लेकिन साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है, चाबी उसी के पास है, हम किसी के पास, ब्रह्मा बाबा के पास भी चाबी नहीं थी। तो इसीलिए जो भक्त अपनी इच्छा लेकर के आएगा उसे उसकी इच्छा के अनुरूप ही साक्षात्कार होगा। बस हमारा तन और मन, ये हमने जितना बाबा को अर्पण किया हुआ होगा उतना ही बस बाबा हमारे तन और मन के द्वारा भक्त की इच्छा को पूर्ण कराएगा। ऐसे ही उस दिन यही अनुभव किया, मन में संकल्प हुआ, तुरंत बाबा ने इच्छा को पूर्ण की। और इतना ही नहीं, उसके बाद उस दिन बाबा ने सुबह क्लास नहीं कराई थी क्योंकि बाबा को काफी खांसी थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी बाबा की, तो सुबह क्लास नहीं कराई थी। शाम को बाबा ने बस जल्दी, नॉर्मली क्लास 8:45-9 बजे होती है, लेकिन उस दिन बाबा ने 7 बजे ही बोला जमुना प्रसाद भाई को कि भाई आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सबको इन्फॉर्म कर दो। तो यहाँ बाहर एक घंटा रखा रहता था, घंटी उन्होंने बजाया, सब इकट्ठे हो गए, सबने को बता दिया और सब भोजन आदि करके 7:30-8 तक आ गए और बाबा भी क्लास में आए। और उस दिन बाबा ने एक बार भी बाबा को न खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है क्या कि जब कर्मातीत अवस्था हमारी भी होगी ना, तो शरीर के सब कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल जो है संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर देगा। बिल्कुल इतनी फ्लॉलेस बाबा की मुरली चली, एक बार भी कोई कष्ट नहीं हुआ। और बाबा मुरली चला के फिर खड़े हुए और फिर बच्चों को दृष्टि देके, याद प्यार देके बाबा एक कदम आगे बढ़े, फिर बाबा रुक गए, फिर बाबा घूमे, फिर बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी, एक एक बच्चे को दृष्टि देके फिर बाबा आगे बढ़े, फिर एक कदम बढ़ के फिर रुक गए। तो दरवाजे तक जाते जाते बाबा 3-4 बार। और बस उस दिन बाबा को ये होश, शिव बाबा को तो मालूम होता है जानी जाननहार, और ब्रह्मा बाबा भी चूंकि संपूर्ण कर्मातीत बन चुका था शिव बाबा के संग का रंग, तो उसको भी जैसे पूरा आभास था आज ये मेरा बच्चों से अंतिम साकार में मिलन है, चलो मैं पूरी पूरी की पूरी भासना दृष्टि के द्वारा बच्चों को दूं। तो एक एक बच्चे को बाबा को ने दृष्टि दी, बाबा कमरे से बाहर हुए हिस्ट्री हॉल से, और बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। पहले कभी भी बाबा ने इतने 33 सालों में कभी नहीं बोला, बस याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कह के बाबा जाते थे। उस दिन बाबा ने बोला बच्चों से बाबा छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। यह है इच्छा मृत्यु का प्रतीक। भीष्म पितामह का कहते थे ना उसका, तो ये हमारा भी जब अंत मते सो गते तभी होगा जब हमारे में भी इच्छा मृत्यु की शक्ति होगी, हमें भी आभास होगा हाँ बाबा अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, आ रही हूँ, सारे मेरे यहाँ के हिसाब किताब चुक तो हो गए हैं, मैं आपके पास, जैसे बाबा को प्रतीक हुआ और बस बाबा धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपने कमरे की तरफ गए और बस दादी जी के हाथ में हाथ और नैन से नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने देह त्याग किया। लेकिन यही मालूम होते हुए कि हाँ अब मैं जा रहा हूँ, सबसे छुट्टी लेकर के विदा लेकर के बाबा गए। अगर हमारी इच्छा मृत्यु नहीं हुई और प्रकृति के आज ही बाबा ने मुरली में बोला था ना, आज की मुरली का क्या सोल था मुख्य, जितना जितना हम सत्व प्रधान बनते जाएंगे उतना क्या होगा, नेचुरल कैलिमिटीज ये प्राकृतिक आपदाएं भी विनाश भी नजदीक आएगा, तो ये विनाश हमारी मृत्यु का कारण न बने, प्राकृतिक आपदा ये खास देखना है। कैसे देखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं पर तो हमारा वश नहीं, बाबा भी आए बस बाबा ने देखा और ये देह त्याग करके बाबा चले गए, लेकिन वंडर उसके बाद देखा, आश्चर्य क्या बड़ा आश्चर्य, बाबा ने देखो 18 जनवरी को शरीर छोड़ा रात्रि को अर्ली मतलब नाइट में, और 18 की पूरी रात शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन 19 की रात, 20 का सारा दिन 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। हम तो यहाँ पर पहले से ही थे, हम लोगों ने वरिष्ठ भाई भाइयों ने बाबा को स्नान वगैरह कराया और जहाँ शांति स्तंभ है यहीं पर ही बाबा का अग्नि संस्कार किया गया था, तो यहाँ पर लाया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये, ना बाबा को कोई इंजेक्शन दिया गया था, ना कोई केमिकल लोशन कोई चीज ऐसी लगाई गई, लेकिन बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ, और नहीं तो आत्मा जब शरीर छोड़ जाती है शरीर अकड़ जाता है स्टिफ कुछ घंटों में, लेकिन बाबा का शरीर बिल्कुल काफी हद तक फ्लेक्सिबल था, चमकता, न कोई दुर्गंध कोई नहीं, और स्नान आदि करा के कपड़े वगैरह बिल्कुल थोड़ा बहुत स्टिफ अगर हुआ हो, लेकिन मैंने तो देखा साथ ही साथ था पूरा बिल्कुल बाबा का। ये है प्रकृति जीत का प्रतीक, पांच तत्वों के ऊपर भी जीत, हम मन जीते जगत जीत जब बोलते हैं तो मन के साथ जगत के अंदर तो प्रकृति भी आती है, इसीलिए बाबा बोलता है प्रकृति के तत्वों को भी रोज दान करो, हमारी शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं, क्यों, क्योंकि ये ही अंत में कभी हमारी मृत्यु का कारण न बन जाए। बैठे हैं यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अर्थ को एक आया तेजी से और ये छत गिरी, मानो गर्डर गिरा लोहे के, ये वो हमारे दुख अशांति मृत्यु का अगर कारण बन गया तो अंत मते सो गति क्या होगी, दुर्गति हो जाएगी, चारों तरफ चीख पुकार हल्ला और खून बहरा होगा, बस ऐसे में कोई बाबा की याद होगी क्या, नहीं है। इसीलिए प्रकृति के ये जो तत्व है ना, इनको हम अपना मित्र बना लें। कैसे बनाएंगे मित्र, जस्ट एक बात, एक एक बात कि मानो प्रकृति का जो ये है पृथ्वी, बाबा ने कहा सबसे बड़ा दुख और मृत्यु का कारण ये धरती बनेगी, जमीन हिलेगी, अभी भी बहुत बार हिलती है, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं, मिनट भी नहीं लगते, तो वो जब तबाह होंगे, और वो होना तो है ही यही है, बाबा ने कहा है, प्रकृति को भी जैसे गुस्सा आता है कई बार बाबा ने बोला ना, और ये प्रकृति भी अब बिल्कुल विनाश के लिए तैयार खड़ी है, बाबा से पूछ रही है बाबा मैं कब करूं, और एक एक तत्व, अभी तो एक दो तत्व हलचल करते हैं, जब पांचों तत्व इकट्ठे हलचल करेंगे क्या भयानक सीन होगा, इमेजिन करो। तो बाबा कहता है धरती हमारे दुख मृत्यु का कारण न बने तो क्या करें, किन में आपस में मित्रता होती है, जिनके संस्कार मिलते हैं एक दूसरे से। क्लास तो आप सब रोज करते होंगे, क्लास के बाद भी जब क्लास पूरी हो गई बाहर गए अक्सर करके दो दो तीन तीन चार भाइयों का बहनों का ग्रुप जिनके संस्कार आपस में मिलते हैं वो जरूर कुछ देर एक्सचेंज करेंगे बातों को, हाँ भाई कल क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ, और क्यों, मित्रता आपस में उनके संस्कार मिल रहे हैं इस कारण से। ऐसे ही प्रकृति के संस्कारों को हम अपने से मिला लें। पृथ्वी का कौन सा संस्कार है सबसे बड़ा, सहन शक्ति, और पृथ्वी का सबसे बड़ा संस्कार है दातापन का, देने का। पृथ्वी में एक बीज बो दो पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। पृथ्वी से अनाज मिलता है, सब पानी मिलता है, फल फूल सब कुछ, पेट्रोल सब पृथ्वी देती है, दाता है। ऐसे अगर हम भी दातापन का संस्कार धारण करें, कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं, कोई भी हमारे सम्मुख आए शुभ भावना शुभकामना प्रेम आदर सत्कार उसके प्रति ऐसा स्नेह भाव हो, बस उसे लगे ये मेरे अपने हैं, जैसे बाबा से लगता था। बाबा के सम्मुख जब बूढ़े बूढ़े जाते थे उन्हें लगता था बाबा हमारा है, बाबा उनके साथ उनके जैसा। हमें याद है जब हम 16-17 साल के आए यहाँ पर आए, बाबा से मिलते थे, आओ बच्चे चलो बैडमिंटन खेलते हैं, आओ बच्चे चलो घूमने चलते, यंग के साथ यंग की तरह व्यवहार, बच्चों के साथ बच्चे, हरेक को ये लगे कि ये मेरे अपने हैं, बाबा से ये लगता था। इसी तरीके से हम भी पृथ्वी की तरह दाता बनेंगे, स्नेह प्यार रिस्पेक्ट सबको देते चलेंगे, तो क्या होगा, पृथ्वी का संस्कार धारण कर लिया तो पृथ्वी कभी भी हमारी मृत्यु का कारण भूस्खलन के कारण नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि हमने उसे अपना दोस्त बना लिया, और दोस्त तो मित्र, तो मित्र की हमेशा रक्षा करता है, कभी जान नहीं लेता। तो इसीलिए बहुत गुण है, लेकिन मैं यहाँ एक ही बता रहा हूँ समय के अभाव। ऐसे ही जल, जल बाबा ने बताया, ये खास करके जल समुद्र के किनारे जो बड़े बसे हुए हैं, या उत्तराखंड में भी देखा ना कितना बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ, जल भूचाल भी आया और नदी इतना उफान पर, क्यों, जल में सबसे बड़ा गुण कौन सा है, शीतलता। उससे भी बड़ा गुण है जल में एडजस्टमेंट का। देखो हर जगह एडजस्ट हो जाता है, थाली में लो थाली में एडजस्ट हो जाएगा, कटोरी में लो कटोरी में, गिलास में लो गिलास में सेट हो जाएगा, चम्मच में लो चम्मच में। ऐसे ही अगर हमने अपना ये संस्कार बनाया होगा कि हम हरेक के साथ एडजस्ट होके चल सके, ये न कहें कि इनके साथ चलना तो बड़ा मुश्किल है इनके साथ आसान है। हमारा अपना संस्कार, बाबा को देखते थे, दादियों को देखते थे, हरेक के साथ एडजस्ट होके कैसे चलते थे, वाकई बहुत बहुत बड़ी कमाल है। इसी कारण से हर एक को लगता था ये मेरे अपने हैं। तो जल की तरह हमारा एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का संस्कार, बस जल सेट हो जाता है, हम भी हर आत्मा के साथ सेट होके चल सके, किसी से हमारा स्नेह हो, किसी के प्रति घृणा हो, ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं, वो बाबा नहीं चाहता एडजस्टमेंट। तो क्या होगा, अंत समय में चाहे जितने भी सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी, जितने भी क्लाउड वर्स्ट होगा, कुछ भी हो, लेकिन जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, दुख अशांति का। और बाबा ने कहा है तत्वों को अगर मित्र बनाया हुआ होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पैर वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, हमें सोचना नहीं पड़ेगा अभी अर्थक्वेक आया इधर भागे या इधर, ऑटोमेटिकली तुरंत पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी, बाबा मक्खन से बाल की तरह हमें बचा लेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम प्राकृतिक आपदाओं के कारण हमारे मृत्यु को पाया तो वो तो अंत मते सो गति तो हो ही नहीं है, वो तो दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि प्राकृतिक आपदा चारों तरफ हो रही है, हमें दुख अशांति हो रही है, हमारे सम्मुख हमारे मित्र संबंधी सगे बिल्कुल क्लोज जिनके प्रति हमारा बहुत स्नेह है वो मृत्यु को पा रहे होंगे, तो हमारी बुद्धि कहां जाएगी। इस कारण से ऑटोमेटिकली बाबा सेफ्टी से निकाल लेगा अगर इन तत्वों को मित्र बनाया हरेक के, आप 10-10 गुण सोचना, हर एक में 10 से ज्यादा गुण है, मैं एक एक बता रहा हूँ। जल में फ्लेक्सिबिलिटी का, पृथ्वी में दातापन का, वायु में कौन सा गुण है, हल्का। वायु हर चीज को ऊपर उठाती है, पृथ्वी जैसे हर चीज को नीचे खींचती है, अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वायु हर चीज को उल्टा हल्का बना के ऊपर उठाती है। ऐसे ही कोई भी परिस्थिति में हम भारी ना बने। अक्सर होता क्या, कोई पेपर आया, परिस्थिति आई, हम भारी हो गए अगर, तो बस ना बात करने की दिल होगी, ना खाना खाने की, एकांत, चलो भाई मुझे अकेला छोड़ दो। वो एकांत अकेला जो बाबा चाहता है वो नहीं है, बल्कि जैसे मूड ऑफ होके बिल्कुल ऐसी जगह जहां और व्यर्थ संकल्प व्यक्ति के चलते रहे। इसीलिए हल्का रहे, भारी ना हो, ये अपने को देखते तो क्या होगा, अंत समय ये साइक्लोन बहुत बड़ा मृत्यु का कारण बनेगा। हवा बस इतने बड़े बड़े वो चलेगी, देखो विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, पूरे सब पर हावी हो जाता है, चाहे अफगानिस्तान हो, इराक हो, कहीं भी हो, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के सामने कुछ नहीं कर सकता था। वहीं पर सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं अभी, क्योंकि वो बहुतों के दुख देने के निमित्त बना है। तो कभी कोई कैटरीना तूफान आ रहा है, कभी लैला तूफान आ रहा है, नंबर ऑफ ऐसे तूफान आ रहे हैं, ऐसी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आ रही है जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, और वो तो अभी तो रिहर्सल है, बाद में इतनी ज्यादा आएंगी, और वो एटॉमिक बम और प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा। प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा तो बाबा ने बताया किसका ज्यादा सफर करना पड़ेगा, है? किन देशों को, भारत देश को। वो सब जो बड़े बड़े वो देश है, अमेरिका, जर्मनी, जापान, वो सब तो एटम बम के द्वारा उनका विनाश होगा, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा भारतवासियों को, प्रकृति के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही बहुत सुख देखा है, तो बहुत दुख भी इन्हें ही देखना है। तो हम सब तो भारतवासी, तो इसलिए प्राकृतिक आपदा से बचने की भी बिल्कुल बाबा ने ये विधि बताई है उन तत्वों, क्योंकि ये शरीर जो है ना, यही हमारा आदि से लेकर अंत तक का साथी है। इसी तरह आकाश का सबसे बड़ा गुण कौन सा है, विशालता। आकाश मार्ग से ना आने वाले जो भी होंगे, एटम बम, हाइड्रोजन बम, मिसाइल, रॉकेट, जो आकाश मार्ग से आने वाली चीज होंगी, वो हमारे मृत्यु दुख का कारण नहीं बन सकते, अगर आकाश की तरह हमने विशालता धारण की होगी, किसी की कमी कमजोरी को दिल में नहीं रखा होगा। अभी विशालता उतनी नहीं है, व्यक्तियों के स्वभाव के अनुसार वो चीज को हम धारण कर लेते हैं। बाबा क्या चाहता है, इतनी विशालता हो जो किसी के प्रति भी नेगेटिविटी ना हो। उससे क्या होगा, वो आवश्यकता क्यों है, जब व्यक्ति अनेक प्रकार की हमारे सामने समस्याएं आएंगी, लेकिन भूलने की शक्ति, हमने देखा दादी में, बाबा में, बस कोई बात हुई, घटना हुई, कोई व्यक्ति हमें याद रहता था कि ये व्यक्ति ने दादी का अपमान कर दिया, ये बात नहीं मानी, लेकिन बस थोड़ी देर में ही दादी, तो उससे ऐसे बात जैसे वो घटना हुई नहीं। हम लोग सोचते थे, हम लोग याद दिला, दादी आपको सुबह इसमें ये बोला, अच्छा ऐसा हुआ था, दादी को जैसे उसका बिल्कुल भान नहीं, इतनी बड़ी ऐसा जैसे ये वायरस कंप्यूटर में मिटाने की क्षमता, भूलने की शक्ति, ये बहुत बड़ी आवश्यकता, ये ही हृदय की विशालता है। किसी की भी कमी कमजोरी को हम मन में रख न ले, ये हो। और अंतिम है कौन सी शक्ति, अग्नि। अग्नि का क्या स्वरूप है प्रकृति में, सूर्य है, सूर्य अग्नि का प्रतीक है, और इसका ये बहुत बड़ा रोल है। जब भी सूर्य उगता है, जीवन शुरू हो जाता है संसार में, सूर्य छिपता है, जीवन भी कम हो जाता है। अभी आवश्यकता क्या है, बस ये सूर्य अग्नि, अग्नि का क्या गुण होता है विशेष, हर चीज का रूप बदल देती है। अग्नि में कोई भी चीज डालो, उसका रूप बदल जाता है। ऐसे हमने ज्वालामुखी अग्नि, योग की ऐसी अग्नि जलाई हुई हो, हमारे सम्मुख अंत में बहुत आत्माएं आएंगी, बहुत इच्छाएं लेकर आएंगी, तो बाबा ने कहा है उसका रूप बदल जाए। रोती हुई आत्मा आए, हंसती हुई चली जाए। कुछ नहीं, हमारे स्वरूप को देख के जो इच्छा लेकर के वो आई होगी उसकी प्राप्ति का उसे अनुभव होगा, हमें देने की भी बात नहीं, बाबा हमारे द्वारा उसको वो अनुभव कराएगा। हम सबने यज्ञ इतिहास में पढ़ा है ना ब्रह्मा बाबा का, वो तो थी कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा, सबको नारायण का, कृष्ण का, स्वरक का, सब साक्षात्कार होते थे, सब बाबा के साथ रास करते थे। लेकिन ये भी सुना है, पढ़ा है कि एक सरदार जी थे, उनका परिवार ज्ञान में आता था, वो नहीं आते थे तो बड़ा नाराज रहता था, तो उसने सोचा मैं बाबा की हत्या कर दूंगा। एक दिन छुरा लेकर के गया, कहा मुझे बाबा जी से मिलना है। बहन ले गई, बाबा के पास बैठा दिया और बहन तो अपने काम में लग गई। तो जब उसने देखा मैं अकेला हूँ बाबा, तो उसने छुरा निकाला और बाबा को मारने ही वाला था, तो क्या हुआ, उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार। अब बाबा गुरु नानक देव की तो आत्मा नहीं है, लेकिन शिव बाबा करण करावन हर, शिव बाबा ने उसी का साक्षात्कार कराया जिसके प्रति सरदार जी की श्रद्धा थी, भावना थी। अगर कृष्ण का साक्षात्कार होता तो उसे कोई भी वो अनुभव नहीं होता और वो नुकसान कर देता। तो गुरु नानक देव जी का जैसे ही साक्षात्कार हुआ वो तो एकदम चौंक गया, अरे गुरु जी मैं क्या करने वाला था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसने छुरा बाबा के पैर के पास रख दिया, माफी मांगी और बहुत, अरे मुझे माफ कर दो, मैं तो कितना बड़ा पाप करने वाला था। उसे तो वो गुरु नानक देव ही दिखाई दे रहे थे, ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे। और बहुत बस पश्चाताप करता हुआ वहां से चला गया। यही स्थिति अंत में हमारी आपकी सबकी होनी है। लोग विभिन्न इच्छाएं लेकर आएंगे, लेकिन करण करावन हर बाबा शिव बाबा उनकी उन इच्छाओं को हमारे इस तन मन के द्वारा पूरा कराएगा, जैसी उसकी भक्त की हमारे प्रति श्रद्धा। जब हमारी जड़ मूर्तियां ही, आज जड़ मूर्तियों के सामने कितने भक्त हमारे आ रहे हैं, इष्ट देव हमारे दर्शन करते हैं उसमें, तो मैं तो चैतन्य हूँ, यहाँ पर मेरी ही जड़ मूर्तियां हैं, उनके सामने आके वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति का अनुभव कर रहे हैं और मेरे चेतन के सामने न करें, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो चैतन्य में हूँ। तो इसीलिए अभी से ही कोई भी आत्मा आए हमारे सामने, हम इसी प्रैक्टिस में रहें, वो ही अंत मते सुगते के रूप में काम में आएगी। अंत में हमारे द्वारा विश्व की अनेक आत्माओं को वो साक्षात्कार होंगे जिसकी वो इच्छा रखते हैं। और इस रीति से हम अभी से ही अपने को अंतिम क्षण के लिए तैयार करते रहेंगे ना, तो बस फिर कोई कारण ही नहीं कि हम हमारी गति सदगति न हो और अंत में हम पूरे सफल न हो। ब्रह्मा बाबा को यही तो देखा, बस बाबा को प्रकृति का ये जब अग्नि संस्कार किया गया पूरा, बिल्कुल पांचों तत्वों से बने इस शरीर पर भी मन तो जीते, जगत जीत था ही, लेकिन प्रकृति जीत, वो बाबा का प्रत्यक्ष देखा। इस रीति से हम सबको भी ये प्रकृति जीत भी बनना है, मन जीत भी बनना है, तभी हमारा अंत मते सुगते होगा। और इन्हीं शुभ इच्छा के साथ रोज इसको हम दोहराएं, रोज प्रकृति के तत्वों को भी हम दान करें, तो कोई कारण नहीं ये प्रकृति हमारा अंत में साथ न दे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।